अभिमन्यु ने इप्सिता के कान के पास जाकर कहा, इप्सिता, ये हमारा हक है, आप हमें रोकेंगी तो नहीं? इप्सिता ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु ने अपनी टाउल उतारकर फेंक दी। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु की बॉडी की तरफ देखा, उसने शर्माते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। इप्सिता के पेट में तितलियां उड़ रही थीं। वो नहीं समझ पा रही थी कि वो किस तरह अभिमन्यु से अपनी नजरें मिलाए। इप्सिता को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी और शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। अभिमन्यु ने इप्सिता की गर्दन पर किस किया और वो धीरे धीरे किस करते हुए नीचे की तरफ आने लगा। अभिमन्यु ने इप्सिता की कॉलर बोन पर किस किया और जैसे ही वो थोड़ा नीचे पड़ा, इप्सिता के हाथ अभिमन्यु की पीठ पर चले गए। उसने कसकर अभिमन्यु की पीठ पर अपने नाखून गड़ा दिए। अभिमन्यु उसे ऐसा करते देखकर कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसे ज्यादा कुछ महसूस ही नहीं हुआ था। अभिमन्यु की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि इप्सिता के नाखून उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाए। अभिमन्यु इप्सिता की गर्दन पर धीरे से बाइट करने लगा, जिससे इप्सिता की एक तेज सिसकी निकली। अभिमन्यु इप्सिता की सिसकी सुनकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने इप्सिता के हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से वो इप्सिता की बॉडी को टच करने लगा। उसने इप्सिता के हर बॉडी पार्ट को टच किया और इप्सिता अपनी आंखें बंद किए हुए अभिमन्यु के टच को फील करती जा रही थी। तभी अभिमन्यु का हाथ इप्सिता के पैरों के पास गया और इप्सिता की सांस वहीं थम गई। उसने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा। अभिमन्यु के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो धीरे से इप्सिता के कान के पास जाकर बोला, इप्सिता, आर यू रेडी? इप्सिता ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु ने इप्सिता के ऊपर जाकर उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, इप्सिता, हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा दर्द ना हो, बट अगर आप कहीं पर भी थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील करती हैं तो तुरंत हमें रोक दीजिएगा, ओके? इतना बोल रहा था कि तभी इप्सिता ने उसकी बात काटते हुए कहा, अभिमन्यु, हम लाइट्स ऑफ कर सकते हैं? अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात? इतना बोलकर अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और स्विच ऑफ कर दिया। रूम में अभी भी बिल्कुल अंधेरा नहीं हुआ था। वहां पर कई सारी कैंडल्स और डिम लाइट्स चल रही थीं। तभी अभिमन्यु ने इप्सिता के कान के पास कहा, ठीक है इप्सिता, अब हमें कोई नहीं रोकेगा। अभिमन्यु ने इप्सिता के होठों पर अपने होठ रख दिए। तभी इप्सिता की एक तेज सिसकारी निकली और उसने अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, आह अभिमन्यु, रुक जाइए। जैसे ही इप्सिता ने उसे रोकने के लिए कहा, अभिमन्यु तुरंत रुक गया। उसने देखा कि इप्सिता की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अभिमन्यु ने धीरे से इप्सिता के गाल पर किस किया जहां उसके आंसू बह रहे थे और फिर उसके होठों पर किस करते हुए उसके हाथ को रब करने लगा। थोड़ी ही देर में इप्सिता रिलैक्स हो गई और उसने भी अभिमन्यु को किस करना शुरू कर दिया। वो दोनों अपने इस प्यार भरे मोमेंट में खो गए और थोड़ी ही देर में वो कमरा उनकी सिसकियों और तेज चलती सांसों से भर गया। अभिमन्यु और इप्सिता दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। इप्सिता इस वक्त थोड़े दर्द में थी, लेकिन अभिमन्यु ने उसे बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबल किया और वो उसके लिए काफी ज्यादा कंसर्न था। वो बीच बीच में बार बार इप्सिता से पूछ रहा था कि वो ठीक है या नहीं। इप्सिता उसकी इतनी ज्यादा फिक्र देखकर काफी खुश हो गई थी और धीरे से अपना सिर हिलाकर आगे आते हुए इप्सिता ने भी अभिमन्यु के होठों पर किस कर लिया। वहीं दूसरी तरफ उदय और नंदिनी अपनी हवेली में पहुंच चुके थे, जहां पर उदय की मम्मी नंदिनी की मम्मी के साथ बैठकर देर रात तक बातें कर रही थी। वहीं उदय नंदिनी का काफी देर से वेट कर रहा था और नंदिनी अभी तक रूम में नहीं आई थी। उदय वहीं रूम में इधर उधर टहलते हुए नंदिनी का इंतजार कर रहा था। उसने अपने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, कहाँ रह गई नंदिनी इतनी देर से? हम उनका इंतजार कर रहे हैं और वो है कि अभी तक आई ही नहीं, आखिर ऐसा क्या कर रही है? इतना बोलकर उदय नंदिनी को देखने के लिए सीधे अपने कमरे से बाहर निकला। उदय ने देखा कि नंदिनी वहीं नीचे हवेली के हॉल में बैठी हुई है और अपनी दोनों मम्मियों के साथ बातें कर रही है। उदय वहीं सीढ़ियों के पास आकर रुका और उसने नंदिनी की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए वहीं बातों में बिजी थी। उदय वहीं रुककर नंदिनी की तरफ देखते हुए बोला, अब क्या करें हम? अगर अभी नंदिनी को बुलाने जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उदय नंदिनी को देखकर ये बात सोच ही रहा था कि तभी उसने कहा, हमारा बुलाना सही नहीं होगा। वो इतना बोलकर वापस अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी नंदिनी की मॉम की नज़र उदय पर पड़ गई और उन्होंने जैसे ही उदय को अपने रूम में जाते देखा, वो नंदिनी और सुहासिनी जी की तरफ देखते हुए बोली, अब काफी रात हो गई है, मुझे लगता है तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए, उदय तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। इतना बोलकर नंदिनी की मॉम ने उदय की तरफ इशारा किया। उदय की मम्मी ने भी देखा कि उदय अपने रूम में जा रहा था और उन्होंने नंदिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे हाँ नंदिनी बेटा, आप ऊपर जाइए और हम आपकी मम्मी के साथ अभी कुछ देर और बातें करेंगे। नंदिनी ने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं भी आप लोगों के साथ। नंदिनी बोल ही रही थी कि नंदिनी की मॉम ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, नहीं उदय तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इस समय तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ बैठने की जरूरत नहीं है और वैसे भी हमारी बातें तो अभी काफी लंबी चलने वाली हैं, है ना सुहासिनी जी। उदय की मम्मी ने हामी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल, जाओ नंदिनी बेटा तुम जाओ। नंदिनी उन दोनों की ये बात सुनकर तुरंत अपने रूम की तरफ गई और उसने सोचा, पता नहीं क्या जरूरत थी उदय को इस तरह रूम से बाहर आने की, अब पता नहीं दोनों मम्मियां क्या सोच रही होंगी। नंदिनी ये सोचते सोचते सीधे अपने रूम में गई और वहां उसने देखा उदय अपना मुंह फुलाकर बेड पर बैठा हुआ था। नंदिनी ने अंदर जाकर अपना रूम लॉक किया और उदय के बगल में आकर बैठते हुए बोली, क्या बात है, आप ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठे हुए हैं। उदय ने नंदिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो भी चुपचाप बच्चों की तरह मुंह बनाकर बैठा हुआ था। तभी नंदिनी ने उदय के गाल पर अपना हाथ रखा और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, उदय हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बताइए आप रूम से बाहर क्यों आए थे, आपको अगर कुछ चाहिए था तो हमें आवाज लगा लेते। उदय ने नंदिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी नंदिनी ने उदय का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है, आप हमसे नाराज हैं क्या। उदय ने अपना सिर हां में हिलाते हुए कहा, हाँ हम आपसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि जब से आपकी मम्मी आई हैं आप तो हमें भूल ही गई हैं, पता है हम कब से आपका यहाँ इंतजार कर रहे थे और आप हैं कि अपनी दोनों मम्मियों के साथ बैठकर बातें करने में बिजी हैं। उदय की ये बात सुनकर नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बाबा लेकिन उन दोनों से बात करना भी तो जरूरी था ना। उदय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए बोला, पता है हमें आपसे कितनी सारी बातें करनी थी और हमें आप पर कितना प्यार आ रहा था, लेकिन आपने। उदय इतना बोल ही रहा था कि नंदिनी ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। उदय ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि नंदिनी इस तरह से उसे अचानक से किस कर लेगी। वो नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। तभी नंदिनी ने उदय की आंखों में आंखें डालकर कहा, अच्छा सॉरी, अब तो आप हमसे नाराज नहीं है ना। जैसे ही नंदिनी ने उदय से ये सवाल पूछा, उदय ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस तरह का सॉरी तो हम तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतना बोलकर वो नंदिनी को दोबारा किस करने लगा। नंदिनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बस किस ही करेंगे क्या।
उदय ने जैसे ही नंदिनी के मुंह से ये बात सुनी, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। नंदिनी ने धीरे से उदय की गर्दन पर अपने हाथ डालते हुए कहा, सच बताएं तो हमें वो सब कुछ करने का मन कर रहा है जो हमने कल किया था। उदय ने नीचे से ही ये बात सुनी, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने नंदिनी को बेड पर धक्का दिया। खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, नेकी और पूछ पूछ। इतना बोलकर उदय ने जल्दी से अपने शर्ट के बटन खोले और वो नंदिनी के गाल पर किस करते करते अब वो उसकी गर्दन पर किस करने लगा। उदय को इतना खुश देखकर नंदिनी मुस्कुराने लगी और वो दोनों एक दूसरे को किस करते करते एक दूसरे में ही खो गए। नंदिनी उदय के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उदय जो अभी तक बच्चों की तरह नाराज बैठा था, वो उसके पास आते ही इतना ज्यादा खुश हो गया कि नंदिनी उसके साथ अपने आप को बहुत स्पेशल महसूस कर रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। अगली सुबह नंदिनी उदय की बाहों में ही सो रही थी। जैसे ही नंदिनी की आँख खुली, उसने उदय की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। उदय ने उसे अपनी बाहों में भर रखा था। नंदिनी उदय के बिल्कुल करीब गई और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। उदय ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माई लव। नंदिनी उदय की बात सुनकर ब्लश करने लगी और तभी उसने कहा, छोड़िए हमें नहाने जाना है, कल रात मम्मी बोल रही थी कि ईशु के पगफेरे के लिए भी सारी तैयारी करनी होगी। जैसे ही नंदिनी ने ये बात कही, उदय उसकी तरफ देखकर बोला, आज है क्या ईशु के पगफेरे का दिन।